जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरोधारी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जामुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय ललित विशाखा जय राधेश्याम ललित विशाखा जय राधेश्याम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताई गौरनिताई जय गौरनिताई जय जय प्रभुपाद 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 नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जयं विष्णुवाद विश्वप्र आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय जनविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की नित्यानंद विष्णुपाद विदग्ध पंडित सिंह गुरु भक्ति सिद्धांत सतगोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन द्वादश पुनात्मक ब्रजमंडल धाम की नवदी मायापुर धाम की हिलाचल सिकित जगन्नाथपुरी धाम की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की हिताय गौस्तनात्मनंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्ण। श्रीमद भागवतम पाठ कर श्रवन करेंगे सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 22। तमिकः सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयोः त्वं त्यामरिचन्ति कुशलः पपन्नारिति हरं गुरुम्। तमिकः सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयोः त्वं त्वामरिचन्ति कुशलः प्रपन्नारिति हरं गुरुम्। तमिकः सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयोः तम तामर्चन्ति कुशलः पपन्नारिति हरं गुरुम्। तमेकः सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम ताम चरन्ति कुशलः प्रपन्नारिति हरं गुरुम्। तमिकः सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तं चामरिचन्ति कुशलः प्रपन्नारिति हरं गुरुम्। तमिकः सर्व जगत ঈশ্বর বন্ধ মোক্ষয়ো। হরম গুরু মাতায়ে সমীকহ সর্ব জগত ঈশ্বর বন্ধ মোক্ষয়ো। তাম তাম চরন্তি কুশলা পাপন্নার্তি হরম গুরু। হরে কৃষ্ণ। সমীক সর্ব জগত ঈশ্বর বন্ধ মোক্ষয়ো। তম ত্বাম চরন্তি কুশলহা প্রপন্না ইতি হরম গুরু। শব্দার্থ তমীক, নিঃসন্দেহ তুম হো, সর্ব জগত তিনো লোককে, ঈশ্বর নিয়ন্তা, বন্ধ মোক্ষয়ো, বন্ধন তথা মোক্ষ দোনোকে, তম উস নিয়ন্তা কো, ত্বাম ত্বাম অর্চন্তি আপকো পুছতে হে, কুশলহা ধনধান্য চাহানে বালে ব্যক্তি, পপন্নার্তি হরম শরণাগত ভক্তকে সমস্ত কষ্ট কা হরণ করেনে বালা, গুরুম যো সমস্ত পতিত আত্মাওকে কে লিয়ে সদুপদেশ কা কার্য কর সকে। শিল প্রভুপাদ কে অনুবাদ এবং তাৎপর্য। জয় শিল প্রভুপাদ কি। অনুবাদ, হে প্রভু আপ সারে বিশ্বকে বন্ধন তথা মোক্ষকে কারণ হে, কিউকি আপ ইসকে শাসক হে। জো লোক আধ্যাত্মিক চেতনা মে বড়ে চড়ে হে, এ আপকি শরণ মে যাতে হে, অতহ আপ উনকে কষ্ট কো দূর করনে বালে হে, আর আভি উনকি মুক্তি কে কারণ হে, অতএব হাম আপকো পূজা করতে হে। আপ লোক কৃপা করকে বলিয়ে, হে প্রভু আপ সারে বিশ্বকে বন্ধন তথা মোক্ষ কে কারণ হে, কিউকি আপ ইসকে শাসক হে। জো লোক আধ্যাত্মিক চেতনা মে বড়ে চড়ে হে, এ আপকি শরণ মে যাতে হে, অতএব আপ উনকে কষ্ট কো দূর করনে বালে হে, আর আপি উনকে মুক্তি কে কারণ হে, অতএব হাম আপকি পূজা করতে হে। তাৎপর্য, বাস্তব মে বিষ্ণুহি সারে সৌভাগ্যকে পালন পোষণ হার হে। যদি মনুষ্য বিষ্ণু কি শরণ গ্রহণ করতা হে, তো দেবতাও নে শিবজি কি শরণ কিউ গ্রহণ কি। উনোনে এসা ইসলিয়ে কিয়া কিউকি এ ভৌতিক সংসার কি সৃষ্টি শিবজি কে মাধ্যম সে করতে হে, আর শিবজি বিষ্ণু কি ওর সে কার্য করতে হে। জব ভগবান ভগবদ গীতা 14:4 মে ইহ কহতে হে কি এ সারে জীব কে পিতা হে, অহম বিজ প্রদহ পিতা, তো উহ শিবজি কে মাধ্যম সে বিষ্ণু দ্বারা সম্পূর্ণ কার্য কা দোতক হে। ভগবান বিষ্ণু সদৈব ভৌতিক কার্যকলাপ সে বিরক্ত রহতে হে, আর জব উনে ভৌতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ করেনে হতে হে, তো এ শিবজি কে মাধ্যম সে করতে হে, অতএব শিবজি কি পূজা বিষ্ণু কে স্তর পর কি জাতি হে। জব বিষ্ণু বহিরঙ্গা শক্তি সে অচ্ছুতে রহতে হে, তব ও ভগবান বিষ্ণু হতা হে, কিন্তু জব এ উনকে সংস্পর্শ মে রহতে হে, তব এ শিব কে রূপ মে প্রকট হতা হে। জয় শ্রী প্রভুপাদ কি। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्णकरुणा सिन्ध दीनबन्ध जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यं श्रीजगन्नाथाय ते नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भूतैर्महर्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायसे ते जदमूष पुरुष मुक्ते गुणान् षोडश षोडशयात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे हरे कृष्ण। द्वापर युग का शेष भाग में जब विभिन्न अपसिद्धांतों के द्वारा वैदिक सिद्धांत प्राय आच्छन्न हो गया है, उसी समय देवतागण भगवान नारायण के शरणापन्न होता है। तब नारायण जगतवासी को कृपा करने के लिए वेदमूर्ति नारायण ने व्यासदेव का रूप में इस धराधाम में प्रकट हुआ है। प्रकट होकर कृपा करके वेद को चार भाग में विभाजित किया है एवं ये वेद सिद्धांतों को आज तक समझ सके स्त्री शूद्र सब लोग, इसलिए उन्होंने नानान पुराण रचना किए हैं एवं महाभारत रचना किया है और विभिन्न युक्ति तर्कों का अवतरण करके परम तत्व को समझाने के लिए ब्रह्म सूत्र रचना किए हैं। लेकिन इतना सारी ग्रंथ रचना करने पर भी ये परम नियंता का क्या लीला कौन समझ सकते हैं? इतना ग्रंथ रचना करने पर भी जगत जीव के ये कुतर्क कर्कश और काममलिन चित्तों में प्रेम बीज का थोड़ा सा भी अंकुरित नहीं हुआ। तब व्यासदेव ने बहुत चिंतित हो गया है जे जीवस्य कस्य गति भवति, जीवस्य जीव का क्या गति होगा, ये कैसे कल्याण होगा। मैं इतना सारी ग्रंथ रचना किया हूं लेकिन ये तो मैं जो उद्देश्य किया तो हो ही नहीं रहा है। तब दुखी अंतर में बदी का सम में सरस्वती नदी तट पर बैठ के सोचने लगे। उसी समय भगवत इच्छा से प्रेरित नारद जी वहां पे आते हैं, आके व्यासदेव को उपदेश देता है। व्यासदेव, तुम यदि जगत को कृतार्थ करना चाहते हो তব সমাহত চিত্ত মে গোবিন্দকে লীলা স্মরণ এবং উসকা বর্ণন কিজিয়ে তব জগৎবাসী কা উদ্ধার হো সকতে হ্যাঁ। তব নারদ কা উপদেশ প্রাপ্ত হকর ব্যাসদেব নে আপনার সমাহত চিত্ত মে গোবিন্দ লীলা স্মরণ করনে লাগে আর উনকে কৃপা সেই হৃদয় মে স্ফুরিত মাধুর্যময় লীলা কা যে প্রধান সার স্বরূপ শ্রীমদ ভাগবতম রচনা কিয়া হ্যাঁ। ये भागवतम के प्रत्येक श्लोक को कामधेनु का साथ लुना किया गया है। जो व्यक्ति जिसी भाव में इसको आस्वादन करेंगे वो उसी का अर्थ प्राप्त करेगा। इसलिए द्वैत द्वैतवाद अद्वैत शुद्धा द्वैत विशुद्धा द्वैत अचिंत भेदावे तो सारी संप्रदाय के प्रामाणिक मुनिषिबिंद इस श्रीमद भागवत का टीकाकार के আপনি আপনি মত কো লিয়ে হ্যাঁ এবং উসি কা প্রকাশ কিয়া হ্যাঁ। লেকিন ইতনা মত হোনে সে তো মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়গা যে ইতনা মত হাম লোগ কোন সা গ্রহণ করে। লেকিন ইসমে বিভ্রান্ত হোনে কা কোই কারণ নাই হ্যাঁ, কিউকি ভগবান ভগবত ইতনে বাতা হ্যাঁ যে যথা আমাম প্রপদন্তি স্তাং তথৈব ভজাম্যহম। যো জিসি প্রকার ভাব সে ভগবান কা ভজনা করতে হ্যাঁ ভগবান উসকো উসি প্রকার ফল প্রদান করতে হ্যাঁ। তো এ সোচ কে যে বহুত মনীষীবৃন্দ ভক্তবৃন্দ ভগবান কো কিস প্রকার আস্থান করকে উনি জীবন কো সার্থক কিয়া হ্যায় ইসি সে সোচ করকে হাম লোগ কো মানে আনন্দিত হোনা চাহিয়ে। চৈত চৈতন্যমিত ভি ইসকা উল্লেখ মিলতা হ্যায় কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয় প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়। এই শ্রীমদ ভাগবত কৃষ্ণকে তুল্য হ্যায় আর এই সমস্ত জগৎবাসী কা সবই কা আশ্রয় স্বরূপ হ্যাঁ। আর এই শ্রীমদ ভাগবত কে প্রত্যেক শ্লোক মে এবং প্রত্যেক অক্ষর মে নানা অর্থ বহু অর্থ নিহিত হ্যায় বহু অর্থ নিহিত এক অর্থ নাই হতা হ্যায়। যো জিসি ভাব সে জিস প্রকার ইসকো লেঙ্গে ও উসি প্রকার ইসকো উসকো অর্থ প্রাপ্ত কর সকতে হ্যায়। লেকিন হাম লোগ তো ইতনা সারি মত কো সমাচার নাই কর সকতে হ্যায়। লেকিন বিশেষ করে শ্রীধর স্বামী এবং প্রামাণিক গৌড়ীয় আচার্য বৃন্দ যে জীব গোস্বামী বিশ্ব চক্রভাটু ইত্যাদি কা শাস্ত্র টিকা কা হাম লোক আলোচনা করকে বিশেষ করকে সমস্ত মানে আচার্য কাজ সার স্বরূপ যে নির্যাস ছিল বহুপাত কা তাৎপর্য যদি হাম লোক ঠিক সে সমঝে কোশিশ করে এবং সমঝ সকতে তব হাম লোক ভাগবত কো ঠিক তারিকা সে সমঝ সকতে হ্যায়। ইসমে কোই সন্দেহ নাই হ্যায়, ভাগবত কো সমঝ করকে হাম লোক যে আমরা জীবনকে সার্থক কর সকতে এবং ভাগবত কা প্রকৃত অর্থকম হৃদয়ঙ্গম কর সকতে হ্যায়। এই ভাগবত যে ভগবান অদক্ষজ কে মূর্তি বিগ্রহ স্বরূপ হ্যায়, তেনয়ম বাগময়ী মূর্তি প্রত্যক্ষ বর্ততে হরিহি শ্রবণাত সেবনাত পাঠ দর্শনাত পাপনাশিনী। এই শ্রীমদ ভাগবতম ভগবান কা বাগময়ী মূর্তি হ্যায়। জিস প্রকার ভগবান কা দর্শন করনে কা এক বৈদিক বিধি হ্যায় যে চরণ সে লেকর মস্তক দর্শন করনা হতা হ্যায়, পহলে চরণ ইসকা বাদ জাং ইসকা বাদ নাভি বক্ষস্থল ভুজায়ে কণ্ঠদেশ মুখমণ্ডল ললাট শির। উসি প্রকার শ্রীমদ ভাগবত কবি হাম লোক স্টেপ বাই স্টেপ পহলা স্কন্ধ সে লেকে দ্বাদশ স্কন্ধ তক সবনা চাইয়ে। জিস প্রকার ভগবান কা ডাইরেক্ট মুখমণ্ডল দর্শন করে বর্ণন করনে সে হাম লোক কা ক্যা হতা হ্যায় না ইসকো বিপদ ভি হো সকতে। জিস প্রকার হাম লোক আপ লোক শুনে হোঙ্গে প্রামাণিক এক কথা হ্যায় জেসে কবি কালিদাস কা জব কালিদাস কা সমক্ষ সরস্বতী মাতা নে পকড় হুয়ে থে তব কালিদাস ডাইরেক্ট সরস্বতী মাতা কো মুখমণ্ডল কা লাবণ্যময় বর্ণন কিয়ে হ্যায়। উসমে সরস্বতী মাতা বহুত গুসা হয়ে গে যে তোমার ভক্ত হো না অর কুছ হো তুমি মেরে ডাইরেক্ট মুখমণ্ডল দর্শন কে কামো ব্যক্তি কা ধরো চরণ বন করা চাই না। সরস্বতী মাতা গুসা হোগে যে হ্যাঁ ঠিক হ্যায় তুমি দর্শন কিয়া তো মহান বিদ্বান বনোগে কই বনোগে লেকিন তোমারা যশ বা খ্যাতি জগৎ মে নাই হোগা। ইসলাম দেখতে কালিদাস ইতনা বড়া পণ্ডিত হোকে ভি উসকা উতনা যশ খ্যাতি জগৎ মে নাই হ্যায়। উসি প্রকার হাম লোক শ্রীমদ ভাগবতম কো যদি ডাইরেক্ট দশম স্কন্ধ ভগবান কা মাধুর্যময় লীলা জাননা চাহতে হ্যায় আজ পহলা স্কন্ধ নাই পড়তে হ্যায় তো ভাগবত কা প্রকৃত অর্থ হাম লোক ঠিক সে শায়দ সমঝ নাই পাউঙ্গা। হাম লোক কা যো উদ্দেশ্য ভাগবত পড়া চাহতে বিপরীত হো সকতে হ্যায়। কিন্তু ভাগবত কা হর স্কন্ধ কো ভগবান কে এক এক অঙ্গ সহ তুলনা কিয়া গয়া হ্যায়। পাদৌ যদিয়ৌ প্রথম দ্বিতীয়ৌ তৃতীয় তুরীয়ৌ কথিতৌ তদুরু नाभिस्तथा पञ्चमयैव षष्ठो भुजान्तरं दुर्युगलं तथा नौ कण्ठस्तु राजन् नवमो यदियो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतो स्वरूपम्। पद्मपुंड बताते हैं जी भगवान का चरण जुगल पहला एवं दूसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का पादो जदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीयो कथितो तदुरु भगवान का आज उरु देश दो उरु भागवत का तृतीय एवं चतुर्थ स्कंध नाभिस तथा पंचम जे भगवान का नाभि देश पंचम स्कंद है षष्ठो भुजांतरम जे षष्ठम स्कंध जे दो भुजा का बीच भाग माने वक्षस्थल दोर जुगलम तथान्यौ जे बाहु जुगल सप्तम एवं अष्टम स्कंध नाभिस तथा कंठस्तु राजन नवमो यदियो जे भगवान का कंठ दिशे नवम स्कंध आर मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम ये भगवान का प्रफुल्लित मुखमंडल है कौन है दशम स्कंध एकादशो तु ललाट जस्य ये एकादश स्कंध भगवान का क्या है ना ललाट भाग है आ शिरोऽपि तु द्वादशेव भाति भगवान का शिरोदेश है द्वादश स्कंध। इस प्रकार हम लोग को स्टेप बाय स्टेप पहला स्कंध से लेकर धीरे धीरे द्वादश स्कंध तक समझना चाहिए तब के हाथे हम लोग भगवान को ठीक से समझ सकते हैं क्योंकि पहले भगवान को ना समझ के हम लोग जब भगवान का रास लीला अन्न समझ चाहेंगे तो हम लोग सामान्य माने लड़का लड़की का जैसे प्रेम काम भाव ये समझ के हम लोग माने पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र निर्देश है जो पहला स्कंध बहुपात भी बहुत स्ट्रिक्ट थे इसी का बोले पहले स्कंध से पढ़ के जाना है डायरेक्ट अगर दशम स्कंध पर कुछ नहीं पढ़ना है तब क्या ठीक से समझ सकते हैं। और आज हमारा जो भागवत का अष्टम स्कंध ये भागवत का टोटल दस विषय वस्तु है जे अत्र स्वर्ग विसर्गस्थ स्थानम प्रश्नमूतय मन्वंतर ईशानु कथा निरध मुक्ति राश्रय जे स्वर्ग ब्रह्मांड का सृष्टि उपसृष्टि और स्थानम लोकालोकांतर का वर्णन भगवान का द्वारा पोषण उतय माने सृष्टि प्रेरणा या कर्म वासना मनमंत्रे मनुओं का परिवर्तन ईशानु कथा माने भगवत ज्ञान निरोध माने अपना धाम भगवत धाम गमन मुक्ति एवं आश्रय ये दस विषय वस्तु के लेके श्रीमद भागवतम पूर्ण होता है। ये दस विषय मध्य आज हम लोग का क्या है ना छठा विषय वस्तु है अष्टम स्कंद जो मनमंत्र जो मनुओं का शासन ये मनमंत्र बोलते हैं मनमंत्राणि सद्धर्माणि ये मनुओं के शासन धार्मिक सिद्धांत सनातन धार्मिक सिद्धांतों को स्थापन करने के लिए है। तो मनु का क्या कार्य है मनु का क्या काम है मनु कौन है जो कि प्रश्न करेगा जे मनु है ये समस्त जगत के सभी जीवों के पिता है और उन्होंने संतान उत्पन्न करने वाला है और ये आत्म साक्षात्कार की ओर मानव जाति को प्रगति कराने के लिए माने शक्ति संपन्न व्यक्ति है और ये मनु ने ही समस्त मनुष्य समाज को वैदिक शास्त्र प्रदान करते हैं जिसका माध्यम से समस्त जीव अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं एवं अपना सदा हमेशा के लिए कल्याण कर सकते हैं। ये मनु का कार्य है और जो यही मनु का माने दिया हुआ मार्ग का अनुसरण करेगा उसका पर भगवान का पूर्ण कृपा रहेगा और वो भगवान का कृपा से जे वैकुंठ में भगवान धाम में अपना अपना स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मनु का कार्य है कि भगवत धाम जाने के लिए अभिलाषा एवं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण किए गए व्यवस्थित कार्यकलाप बा उचित मार्ग प्रदान करते हैं। ये जे समुद्र मंथन लीला ये छठा मनु ये क्या चाक्षुष मन मंत्र में हुआ था इसका पहले हम लोग पंचम मनु तक सुन के आए हैं जे सायम भुव मनु सरोचिस मनु उत्तम तामस रईवत ना चाक्षुष मनु तो रईवत मनु का बोल देता हूँ रईवत मनु में भगवानको अवतार कन्था न वैकुण्ठ। ए वैकुण्ठका प्रिया रमा या लक्ष्मीका इच्छा से उनको प्रसन्नता करने के लिए इस जगत में एक दूसरा वैकुंठ लोग सृष्टि किया था, इसका वर्णन आगे करेंगे जब प्रसंग आएगा। ये छठा मनु है चाक्षुष मनु। जब हम लोग कोई मनमंत्र बताते हैं तब छह विषय वस्तु को लेकर एक मनमंत्र होता है भाई, पूरा साब्जेक्ट पूर्ण होता है। जो मनु, मनु का पुत्र एवं उसी समय इंद्र, इंद्र के सहायक देवता और सप्त ऋषि और भगवान के अवतार, ये सब लेके एक मनमंत्र होता है। तब हम लोग ठीक से समझ सकते हैं मनमंत्र क्या होता है, क्या वृत्तांत तो है। यह चाक्षुष मनमंत्र, ये मनु है चाक्षुष मनु, इनका पुत्र कोई पुत्र है उनमें से पुरु, पुरुष, शुद्धुब्न आदि प्रमुख है। और इस समय चाक्षुष मनमंत्र में इंद्र था, मदद्रुम इंद्र था, और इंद्र के सहायक देवता आप्यायगण, जो विभिन्न देवता होता है इंद्र को सहायता करते कार्यों में, और सप्त ऋषि था हविष्मान, वीरक प्रमुख थे इसमें सात ऋषियों में। और इस समय जो भगवान का अवतार कौन थे सुन के आज अजित, जे वैराज के पत्नी देव संभुता के संभुति के गर्भ से भगवान अजित ने अवतार ने प्रकट हुआ है। जब परीक्षित सुखदेव गोस्वामी परीक्षा में घटना बताते हैं जे ये अजित नहीं सुको रूप धारण करके समुद्र का मंथन करके देवता के लिए अमृत उत्पन्न किए थे, तो सुखदेव गोस्वामी का मुख्य शवन का परीक्ष महाराज बहुत माने सुनने के लालसा हो गया भगवान लीलाए। जी तो आप सुखदेव परीक्षित महाराज ने सुखदेव सिंह प्रश्न पूछते हैं, जथा भागवत ब्रह्मन मथित हो क्षीर सागर जदर्थम वाजदश्चाद्रिम दधारम्बुज चरात्मनः जथामृतम सुरै प्राप्त्यम किम चान्नोदभूत्यतः एतद् भागवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम्। तो परीक्षित महाराज सुखदेव से बताते हैं जे हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, कृपा कर मेरे को बताइए जे भगवान क्यों एक क्षीर समुद्र मंथन किए थे एवं किस प्रकार किया था, और भगवान क्यों शुकर कश्यप, अरे क्या मच्छ कछुए के रूप, कछुए के रूप धारण करके क्यों समुद्र का नीचे अवस्थित था, और देवता लोग अमृत किस प्रकार प्राप्त किया है, और इस समुद्र मंथन से और क्या क्या वस्तु उत्पन्न हुआ है। कृपा करके भगवान का और अद्भुत कार्यकलाप मा लीलाओ मेरे के अच्छे से वर्णन कीजिए, मैं सुनने के इच्छुक हूँ। तब परीक्षित महाराज बहुत माने सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए जे मेरे को और विस्तारित रूप से भगवान का लीला वर्णन करने का मौका मिलेगा। जब श्रोता ने इच्छा प्रकट करते हैं तब आप स्वाभाविक भगवान के प्रेरणा से वक्ता का हृदय से भगवान का लीला स्फुरित हो जाते हैं। श्रोता जितना आग्रह से सुनेगा वक्ता उतना आश्चर्य के स्वर बता पाएगा, क्योंकि भगवत लीला किसी का साधु नहीं बोलने का, भगवत कृपा से ही वक्ता श्रोता को दे सकते हैं। तो अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन प्रारंभ करते हैं जी, एक समय देवासुर संग्राम हुआ लेकिन उसमें देवताओं ने बुरी तरह हार गए हैं। इसमें कारण क्या था ना, दुर्वासा मुनि का श्राप था, इसी कारण से वो लोग असुर से हार करके अपना जे साम्राज्य स्वर्गलोक से विताड़ित तो हो गए। लेकिन उसी समय जो इंद्र थे मददद्रुम एवं उनके सहायक देवता आप्यायगण, बहुत वो लोग मीटिंग किए सब कुछ करके जे इसका तरह हल निकाला जाए, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तब वो लोग निराश होकर कोई उपाय ना देख के ब्रह्मा का स्वभवन में गया, ब्रह्मलोक में गया, जाके उसको सारी ब्रह्मा को सारी वृत्तांत तो कह सुनाया जी, ऐसे ऐसी बात हुआ, हम लोग अभी क्या करें, हम लोग तो स्वर्ग से विताड़ित तो हो गए हैं। तो ब्रह्मा ने सोचा है ये तो बहुत माने स्थिति बहुत शोचनीय है, जे असुर लोग जब स्वर्ग पर राज्य करेगा तो संसार का क्या हाल होगा, तो समझ सकते हैं, तो इसी का कुछ करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा भी बहुत सोचा लेकिन कुछ इसका हल निकाल नहीं पाया। तब ब्रह्मा ने समस्त देवतागण को लेकर के क्षीर समुद्र में श्वेत द्वीप में जाके नारायण का स्तुति करने लगा। ये छह समुद्र कहाँ है? जो पहले बोला जी पंचम जो मनमंत्र में जो वैकुंठ ने जो वैकुंठ लोग जो सृष्टि किया था उनका पत्नी रमा का अनुरोध से यही वैकुंठ है। वीर राघव आचार्य ने बताते हैं जे ये वैकुंठ लोग इसी जगत में स्थित है ना, क्या कहा है ना, लोकालोक पर्वत का ऊपर स्थित है। विष्णु चक्र ठाकुर इसको इस प्रकार वर्णन करते हैं जे अर्जुन का संबंध है, बोलते जे पदम चिर दधिस्थ श्वेत दीपम तमसह प्रकृति परम। ये जे क्षीर समुद्र श्वेत द्वीप जे भगवान का जे धाम है ये श्रेष्ठ है एवं प्रकृति से परे है, ये दिव्य है। तो कैसे हम समझ सकते हैं? तो जगत में ही है फिर दिव्य है या प्रकृति से परे है कैसे समझ सकते हैं ना? प्रभुपाद इसको बहुत अच्छा ही उदाहरण देके हम लोग को समझाते हैं। जिस प्रकार कोई शहर में कोई सरकार का विश्राम गृह होता है, उसमें राज्यपाल या सरकार का कोई बड़ा बड़ा अध्यक्ष ने वहां पे निवास करते हैं, लेकिन वो गृह सामान्य गृह का तरह नहीं होता है। सामान्य का गृह का जो रूल्स उसमें लागू नहीं होता, सरकार का विशेष रूल लागू होता है। उसी प्रकार ये जो सेतो द्वीप बारे क्षीर समुद्र ये जगत में भौतिक होते हुए भी ये दिव्य है एवं श्रेष्ठ परम है। ये जगत से कोई लेना देना नहीं है इसका, ये जाइडे वैकुंठ जगत से कनेक्शन है। ये पूरा इसमें होते हुए भी अलग है, जिसे हम लोग सुने हैं ये वृंदावन धाम, ये जगत से होते हुए भी अलग है। ये जगत का इसका रूल्स लोग नहीं चलते है। जब ब्रह्मांड प्रलय हो जाते फिर भी वृंदावन धाम ऐसे ही रहते, प्रलय नहीं होता है इसका। उसी प्रकार ये वैकुंठ कहा ना लोकालोक पर्वत के ऊपर है, वहां पे सारी देवतागण को लेके ब्रह्मा ने वहां पे जाके बहुत स्तव स्तुति किया। ब्रह्मा ने इसका पहले भगवान को नहीं दर्शन किए थे, तो किस प्रकार स्तव किया ना? वैदिक शास्त्र में जिस प्रकार भगवान का वर्णन है उसी हिसाब में ब्रह्मा ने विशेषकर निर्विशेष रूप में भगवान का स्तव स्तुति किया। उससे भगवान संतुष्ट होकर सामने प्रकट होता है देवता के सामने, लेकिन भगवान का इतना तेज है उसमें वो लोग कुछ देख नहीं पाते हैं, तेज से उसका आंख चकाचन हो जाते हैं, एवं कि अपने आप को भी देख नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा बिना कौन भगवान देख सकते हैं? कोई देख नहीं सकते। तब भगवान कृपा करके ब्रह्मा का दर्शन देते हैं। तो ब्रह्मा जब कुछ समय बाद दर्शन करते हैं शिव को साथ लेके फिर दोबारा स्तुति करते हैं। पहले तो निविशेष रूप में स्तुति किया, फिर जब भगवान सामने प्रकट होता है फिर दोबारा भगवान का स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, देवता के ऊपर प्रसन्न होकर और वो लोग को किस कारण से आए हैं तो भगवान तो सभी जानते ही है। तो भगवान वो लोग को आदेश देता, मतलब उपदेश देता है जी आप लोग इसी समय कुछ ना सोच विचार करके असुर के साथ आप लोग संधि स्थापित कीजिए, दोस्ती कीजिए, क्योंकि आप लोगों को दोस्ती करने बिना कोई उपाय नहीं है। जब असुर के साथ संधि हो जाएगा तब आप लोग क्षीर समुद्र को मंथन करना पड़ेगा। उसमें इतना बड़ा समुद्र तो मंथन दंड कौन होगा? बोला मंदाचल पर्वत ये मंथन दंड बनेगा और रस्सी बनेगा वासुकी नाग सर्प, उसको लेके आप लोग मंथन कीजिए। लेकिन इसमें बहुत सारी आकर्षणीय वस्तु उत्पन्न होगा, लेकिन उसमें आप लोग कोई माने उसमें मन उसमें नहीं लगाना है, उसमें मोहित नहीं होना है। और कोई यदि अशुभता का उपद्रव भी होगा आप लोग माने संभाल के रहिएगा, क्योंकि आप लोग का उद्देश्य आपके स्थिति को संभालना है, आपको स्थिति को माने स्थिति से उबारना है, किसी से दोष माने गुस्सा का बा लड़ाई करना नहीं है। और उसी समय भगवान ने यह भी सावधान कर दिया था जे जब समुद्र मंथन होगा उसमें विष उत्पन्न होगा, लेकिन डरने का कोई बात नहीं है, ये विष को शिव जी ने ग्रहण कर लेगा। भगवान उसमें सब बता दिए थे, सब ग्रहण कर लेगा। जब बोलने के बाद फिर भगवान अंतन हो जाते हैं एवं भगवान का आदेश अनुसार, क्योंकि देवता लोग भगवान का हमेशा स्वर्णगत भक्त होता है, भक्त हमेशा भगवान का हिसाब से भगवान जिस प्रकार चाहते हैं उसी हिसाब से करते हैं। थोड़ी देर पहले ही असुर का साथ बहुत लड़ाई हुआ, असुर लोग वो लोग कितना पिटाई किया, आधमारा करके छोड़ दिया, लेकिन भगवान जब बोला उसे दोस्ती करो वो लोग फिर गया दोस्ती करने के लिए। कभी हो सकता है अभी दोनों लड़ाई किए, थोड़ी देर बाद कोई अथॉरिटी बोलेगा जाओ जाके उस दोस्ती करो, हम लोग कर नहीं सकते। जो हम लोग कोई माने जब पूर्ण स्वर्णगत होगा तब कर सकते। ये भक्तों का या देवता का ये विशेष खासियत है जी, भगवान जो बोलते वही करते हैं। हम देखे जब द्वादशी मुनि को इंद्र ने थोड़ी देर पहले सर काट दिए, फिर जब भगवान ने बोला जाके उसको हड्डी मांगो, वो क्या जाके गिर गया एवं हड्डी मांगा, क्योंकि भगवान जो बोलते हैं देवता वही करते हैं। उसी हिसाब में यहाँ पे भी समुद्र लीला में देवता लोग जाते हैं असुर के साथ संधि बनाते हैं। असुर लोग जब सुना जो अमृत उत्पन्न होगा उससे पीने से हम लोग अमर हो जाऊंगा, तो वो लोग बहुत उत्साहित हो गए, ठीक है हम लोग भी जाऊंगा करूंगा। लेकिन असुर लोग का मन में, असुर लोग के हाथ हमेशा भगवान का मान सोच विचार से और भक्तों का सोच विचार से हमेशा विपरीत चलते हैं। भक्त लोग जो करते हैं, भगवान जो बोलते हैं, शास्त्र में जो बोलते हैं, उसका उल्टा ही करते हैं। ये असुर लोग क्या सोचा मन में, ठीक है हम लोग सोचते चलिए, थोड़ी देर पहले ही तो ये लोग को मारपीट के भगाया, एबार ठीक है जैसे मिल के हम लोग समुद्र मंथन कर लेते हैं, जब अमृत उत्पन्न हो जाएगा वो लोग को मार के भगा देंगे, हम लोग अमृत पी के बस अमर हो जाएंगे, तब तो हम लोग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते है। ये विष्णु इसको भी हम लोग देख लूंगा। ऐसे ही करके वो लोग फिर मंदाजल पर्वत लेने के लिए चले गए। तुरंत पर्वत लेने के लिए गया, वो लोग का तो बहुत शक्तिशाली है कश्यप नंदन देवता असुरी ने जब लेके आ रहे थे, लेकिन मंदार पर्वत इतना जो लक्ष योजन माने उसको विस्तार है एवं ये सोने का था, सोना सबसे भारी होता है, लोहे से भारी होता है, इतना भारी था वो लोग सब थक गए एवं हाथ से फिसल के गिर गया। उसका नीचे बहुत सारी देवता एवं असुर ने भी वास्तव में मर गए। तो भगवान देखा ये तो स्थिति उल्टा हो गए, तो भगवान उसी समय उसी स्थान में गोरुर को पीठ में चढ़ के वहां आके आविर्भाव होता है। ओके भगवान कृपा दृष्टि देके जो देवता एवं असुर ने मर गए थे वो लोग जीवित कर दिए, एवं जो मंदार पर्वत को जो देवता असुर मिले ला नहीं पाया, वही पर्वत को भगवान एक हाथ में उठा के गुरु का पीठ में रख दिया और उस पर्वत के ऊपर सब लोग बैठ गए, देवता असुर भगवान एवं गुरुदेव वो पर्वत को लेके जहां पे मंथन होना था समुद्र का बीच में वहां लाके रख दिए। तो भगवान निर्देश दिए जे गुरु आप चला जाओ, क्योंकि आप रहने से तो वासुकी आ नहीं सकते। तब गुरु चले गए, तब एवं देवताओं ने असुरों ने वासुकी को बुलाया, आमंत्रित किया, वासुकी आया। लेकिन वासुकी कैसे राजी हो गया, क्योंकि जब खींचा जाएगा तो वासुकी का तो कष्ट होगा। लेकिन वासुकी को भी माने लोभ दिया गया था जे आप लोग के भी कुछ थोड़ा भाग दिया जाएगा अमृत का, तो वासुकी भी माने उसमें लालच में आ गया जे मेरे को तो अमृत मिलेगा, हम लोग पहले तो कोशिश किया था, मेरा माँ ने कोशिश किया था जो अमृत पिलाने के लिए, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। अरे अभी यदि माने सबको नहीं मिले, सर्प में यदि मेरे को मिल जाए फिर भी कुछ काम बन जाएगा। वो भी राजी होके एबार मंथन शुरू होने वाला है। देवता असुर ने बहुत उद्यम से मंथन करना प्रारंभ किया, एबार रस्सी को रस्सी हिसाब में सर्प को लपेटा गया, मंथन करना शुरू किया। लेकिन पर्वत तो बहुत भारी है और तो पानी है माने क्षीर समुद्र है और उसका नीचे तो कुछ आधार नहीं है। तो समुद्र जब खींचा गया तो पर्वत क्या हुआ ना नीचे डूब गए, क्षीर समुद्र डूब गया क्योंकि नीचे का आधार नहीं है ना, डूब गया। तब तो देवता लोग असुर निराश हो गए, अरे अमृत तो नहीं मिलने वाला है। तो भगवान ये कच्छप रूप धारण करके नीचे जाके उसको आधार बना, बन के पर्वत को ऊपर उठा दिया। जब असुर देवता देखा अरे पर्वत उठ गए तो वो लोग खुश हो गए। तब देवता भगवान ने देवता एवं असुर को सबको विशेष शक्ति प्रदान करने के लिए कृपा करने के लिए उसी समय सबका अंदर भगवान खुद प्रवेश किया। असुर का अंदर रजोगुण में, देवता का अंदर सत्वगुण में एवं वासुकी का अंदर तमोगुण में प्रवेश किया, जाते वो लोग मान उत्साहित होके और बलवान होके एक कार्य पूरा कर सके। लेकिन जब मंथन शुरू हुआ फिर पर्वत हिलने लगा, क्योंकि बहुत बड़ा पर्वत है उसका। तो भगवान क्या किया जाता है गिर ना जाए, इसलिए भगवान खुद सहस्र बाहु रूप में पर्वत को ऊपर पकड़ हुआ होके एक हाथ से पर्वत को पकड़ के रखा है, आज पर्वत टूट ना जाए इसलिए भगवान खुद उसके अंदर प्रवेश किया। इसलिए देख सकते हैं मंथन कौन कर रहे, भगवान ही सब कुछ भगवान करे, भगवान आदेश माने ज्ञान दिया इसी से प्रकार मंथन करना है, एवं पर्वत को भी लाया, फिर आधार रूप में भगवान बना, फिर सबका अंदर शक्ति संचार किया, फिर पर्वत का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान खुद ऊपर विराज हुआ, फिर पर्वत टूट ना जाए इसलिए उसका अंदर भी प्रवेश किया। तो इस लीला का माध्यम से हम लोग का क्या शिक्षा प्राप्त होता है, जे इस जगत में जो कुछ हो रहे हैं सब भगवान का नियंत्रण से हो रहा है एवं भगवान का शक्ति से हो रहा है। लेकिन हम लोग से सोचता हूँ जे मैं ही किया, ये मेरा बुद्धिमत्ता से हुआ, मेरा बल से हुआ। लेकिन भगवान यदि बुद्धि नहीं देगा, बल नहीं देगा, कौन कर सकते हैं? कोई इसको पूरा कर नहीं सकते हैं। जो भक्त होता है, भगवान का शरणागत होता है, वो ये चीज को ठीक से समझ सकते हैं। अरे ये सब लीला का माध्यम भगवान शिक्षा देते हैं, जे भगवान शिक्षा देते ये जगत में जो कुछ हो रहे हैं वर्तमान जो भी हो रहा है, हुआ था एवं होगा, सब भगवान का माने योजना के हिसाब से होता है। इसी प्रकार मंथन एवं शुरू हुआ, लेकिन भगवान का योजना से विशेष चातुरी से असुर लोग ने क्या किया था ना, सर्प का आकल हिस्सा मुख पकड़ा था एवं देवता ने पिछले भाग पकड़ा था। लेकिन वासुकी के अंदर सांप का अंदर विष होता है, वो विष अग्नि के रूप में, धुएं के रूप में, सांस का रूप में बाहर निकलने लगा। उससे पूरी तरह से असुर लोग माने प्रभावित हो गए। उसी का प्रभाव देवता में भी थोड़ा बहुत आया, वो लोग भी प्रभावित होने लगा। बोला अच्छा बंद होने में संख्या बोल रहे हो, क्यों समय नहीं है, प्रभावित होने लगा। तो भगवान भक्त पर विशेष कृपालु होता है, तो भगवान का माने इच्छा से वायु ने, पवन देव ने माने समुद्र के वायु के जल का कोण लेके उसका ठंडी ठंडी हवा बहने लगा, और ऊपर से देवता पर बारिश भी होने लगा। तो देवता लोग विष का प्रभाव से राहत मिला। लेकिन इतना कुछ मंथन करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो देवता असुर ने निराश हो गया, शायद कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान देखा ये लोग निराश हो रहा है, तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान खुद अभी माने रस्सी पकड़ा मंथन करने के लिए। जब भगवान रस्सी पकड़ा तो अगर क्या हो सकते, बहुत तेजी से मंथन होने लगा। इतना तेजी से मंथन हो रहा है, सारा क्षीर समुद्र आंदोलन होने लगा। उसी समय जितना छोटा बड़ा जलचर था सब सोचा कुछ तो हो रहा है, इतना कुछ पानी माने प्रभावित क्यों हो रही, अभी इतना दिन तक तो कुछ नहीं हो रहा था। तो वो लोग सब ऊपर आठ के देखने लग रहे क्या हो रहा है, सब ऊपर उठ गए, सब जलचर भयभीत हो गए। इतना देखो कि तूफान होता है, कुछ होता है, हम देखता हूँ कोई माने मनुष्य से पहले दूसरा दूसरा पशु पक्षी जीव जंतु लोग समझ जाते हैं। जैसे गांव में कहा बोले ना, कोई बिल्ली या कुत्ते जब चिल्लाते हैं तो कोई अशुभ होने वाला है, मानी वो लोग पहले प्रकृति का समझ जाते हैं जो कुछ अशुभ होने वाला है। उसी प्रकार जो मछली जलचर जलहस्ती सब समझ गए कुछ तो माने बुराई होने वाला है। उसी समय सर्वप्रथम जो मंथन से यहाँ का विष उत्पन्न हुआ, यहाँ पे आचल बात है विष को उत्पन्न हुआ, अमृत तो उत्पन्न होना था ना। अमृत उत्पन्न करने के लिए क्षीर समुद्र में बहुत सारी औषधिया पेड़ डाला गया था ताकि अच्छा से अमृत उत्पन्न है। हम लोग मालूम है औषधि पेड़ में तो सब होता है, जहर भी होता है, अमृत भी होता है। तो पहले जहर भाग निकाल के ऊपर आया, और ये जहर का नाम था ना हलाहल विष। ये जगत में दो प्रकार विष सबसे खतरनाक होते, जैसे तोड़ नहीं होता है, एक कालकूट विष एक हलाहल विष। कालकूट जो पुतोना लगा के आई थी, और ये है हलाहल विष। ये विष आज तो फैलने लगा, तो अब सारा त्रिभुवन इसको माने प्रभावित होने लगा। तो अब देवता लोग भयभीत हो गए, असुर लोग सब मिले क्या होगा अभी। तो भगवान ईश्वर मैं तो पहले तुमको बोल के रखा हूँ, उसी हिसाब से कार्य करो। लेकिन असुर लोग तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में योजना क्या है, लेकिन देवता लोग का योजना मालूम था, लेकिन फिर भी वो लोग उसी स्थिति में भूल गए थे। तो भगवान इंगित किया जे मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ जो अब विष उत्पन्न होगा एवं किस पर जाना है, तो वो समझ गए हैं। वो लोग भाग, देवता लोग भागने लगा कैलाश पर्वत में शिव को स्तुति करने के लिए, एवं असुर लोग पीछे जाने लगा। भगवान तो मैं भी चला जाता हूँ जी, मेरा भक्त को दर्शन हो जाएगा। एवं भगवान सब मिल के गए, जाके देवता लोग देखा शिव ने वहां पे ध्यानस्थ मुद्रा में है। एवं तो यहाँ पे प्रश्न हो सकते है जे भगवान तो सर्वसामर्थ्य है, तो भगवान ये विष को समन माने दमन ना करके, प्रशमित ना करके शिव के पास क्यों भेजा? यहाँ पे आचल बताते हैं जे जे शिव का इसलिए भेजा क्योंकि यहाँ पे माधवाचार्य बताते हैं रुद्रस्य जस अर्थाय स्वयं विष्णु विषम विभुः न संजरहे समर्थोपि वायुम चोचे प्रशांतये। भगवान संपूर्ण समर्थवान है, लेकिन शिव को जस प्रदान करने के लिए, ख्याति प्रदान करने के लिए भगवान ऐसे लीला किए हैं। जिस पर हम लोग देखते हैं गीता में जो कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान पहले ही सबको मार के रखा है, लेकिन अर्जुन को जस प्रदान करने के लिए मतलब कि निमित्त मात्र भव सब साहचे मैं निमित्त बोलो मैं तो सब कुछ मार के रखा हूँ आपको सिर्फ जस लेना है। ये देखते हैं चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पूर्व जब संकीर्तन आंदोलन किए थे चैतन्य प्रभु जिसको एक बार देख लेते हैं छू देते हैं कुछ बात बोल देते हैं बा कोई चैतन्य को देख लेते हैं उसका भी कृष्ण प्रेम जागृत हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की समर्थन नहीं था सारे विश्व में प्रचार करने के लिए भारतवर्ष में क्यों सीमाबद्ध रखा ना चैतन्य महाप्रभु पूरा समर्थवान थे इच्छा करेगा सारे विश्व में माने कृष्ण प्रेम उसमें फैल जाता लेकिन महाप्रभु ऐसे ही नहीं किया अपना प्रिय भक्त शिले बहुपात को जस प्रदान करने के लिए ख्याति प्रदान करने के लिए ये कार्य छोड़ के रखा है जी मेरा प्रिय भक्त आएगा आके मेरा कार्य पूरा करेगा। चैतन्य महाप्रभु बोल के गया पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम ये वाणी बोल के गया लेकिन महाप्रभु खुद किया नहीं मेरा भक्त का कर देगा जी सारा विश्व में जो मेरा नाम फैलेगा ये मेरा कोई विशेष भक्त ही करेगा कौन ना शिले बहुपा। आप देखिए आज सारा विश्व में कोने ऐसे की जगह नहीं है जे ये हरे कृष्ण महामंत्र नहीं फैला हुआ बहुपात का माने जस कीर्ति नहीं फैला हो ये किसी का कृपा से हुआ ना चैतन्य महाप्रभु कृपा से। चैतन्य महाप्रभु बहुपात विशेष शक्ति प्रदान किए जो भक्त होता है भगवान का हमें स्वागत है। जब बहुपात विदेश प्रचार करते थे मैं पहले शुरू किया था सारी विदेश भक्त लोग बहुपात को भगवान बोलने लगा बहुपात नहीं नहीं मैं भगवान नहीं मैं भगवान का सेवक हूँ भगवान का भक्त हूँ बहुपात इसे माना किया जे नहीं मेरे को भगवान घोषित मत करना क्योंकि भक्त मालूम होता है मेरा कोई शक्ति नहीं होता भगवान का कृपा से शक्ति से मैं कर रहा हूँ। या इसी प्रकार शिव जी को जस व ख्याति प्रदान करने के लिए भगवान ऐसे ही लीला किया है। और यहाँ पे शिव को जे अभी लीला शिव का से स्तुति हो रहा है इस स्तुति में दो नंबर स्तुति है ये बहुत सारी स्तुति किया गया इसमें इस स्तुति में आप लोग देखेंगे जितना कुछ किया गया है शिव को विष्णु रूप में ही स्तुति किया गया है। यहाँ पे जो आप लोग सुनेंगे विष्णु जो पहले स्तुति में क्या बताया तुझे बताया देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन ताहि न शरणापन्यम तैलक्कारिति तैलक्य दहनाद विषात जो उसको यहाँ पे शिव को परमात्मा समस्त जीव के पालनहार ऐसे बोल के संबोधित किया गया है। श्री बहुपात बताते हैं जब रक्षा के लिए शिव जी की स्तुति की जाती है तो ये वास्तव में भगवान विष्णु के लिए ही होता है क्योंकि शिव तो विनाश के निमित्त है शिव जी ईश्वर नियंत्रक में एक है जो सत्तावेज अवतार कहलाता है अतएव उन्हें विष्णु के समान गुण वाले कहकर संबोधित किया जाता है। और आज का श्लोक में बताते हैं जो शिव जी को क्या बताया ना बंधन मोक्षों का कारण है। यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं विष्णु बताते हैं जे शिव और विष्णु दोनों ही एक ही है लेकिन इसको दो नाम में पुकार जाते हैं। जब विष्णु ही जब जे प्रकृति के गुणों के संस्पर्श में आ जाते हैं तब उसको शिव कहलाते हैं और जब प्रकृति के गुण से अस्त जाते हैं तब उसको विष्णु कहलाते हैं दोनों ही एक ही है। जैसे भगवान जब कोई शिव माने पद नहीं जीव नहीं होता है तब भगवान खुद शिव का पद ग्रहण करते हैं जब इंद्र नहीं होता इंद्र का पद ग्रहण करते हैं क्योंकि शिव का विशेष महिमा है। यहाँ पे जो स्तुति किया गया है सब विष्णु की स्तुति किया गया है लेकिन शिव को माध्यम बना के चलो हम लोग आज का ये समुद्र लीला में क्या हम लोग का इसका सारांश क्या है जे हम लोग का हमेशा भगवान का शरणापन्न जब रहेंगे जैसे ही दोनों ने समुद्र मंथन किया दोनों में समान मेहनत किया लेकिन सफलता किसको मिला ना देवता का मिला क्यों मिला ना देवता लोग भगवान का योजना के अनुसार कार्य किया है एवं भगवान का बात को माना है लेकिन असुर लोग उसका उल्टा है भगवान जो बोलते हैं उसका विपरीत करते हैं अपना सामर्थ्य अपना बल का ऊपर वो लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए हम लोग इसी प्रकार हमेशा भगवान का शरणापन्न होके जब हम लोग भजन सदन करते जाएंगे भगवान के अनुसार तब हम लोग को भी पूर्ण सफलता प्राप्त होगा भगवान का कृपा प्राप्त होगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री प्रभुपाद की वंदे हरे हरि बोल।